फिर आगे देखिए 143 से 144 में, बिला दलील किसी हलाल चीज़ को हराम ना ठहराओ। ये बड़ी अहम बात है। आज हम में से बहुत सारे लोग किसी भी बात को करने से पहले दलील का इस्तेमाल नहीं करते, फिर बाद में पूछा जाए, कहते हैं वो तो मुझे उसने कहा था, वो एक व्हाट्सएप पे पोस्ट आई थी, ये तो मैंने ट्विटर पे देखा था, ये था वो था। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में दोबारा उन्हीं की कुछ बिदात का तذکرہ है। अल्लाह कहते हैं मैंने जो भेड़ बकरियाँ और ऊँट और गाय बनाए हैं, ये मैंने तुम्हारे इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। यकीन कीजिए कि अगर आपको मैं ये आयतें डिटेल से पढ़ाऊँ तो आप हंसेंगे। ये कैसी अजीबोगरीब बातें करते थे, ये ऐसा है, ये इनके साथ ये होगा, ये औरतें खा सकती हैं, ये मर्द खा सकते हैं, ये फलां नहीं कर सकता, ये नहीं। और अक्सर चीज़ों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखेगी आपको। ख़राब चीज़ है, पेट में बच्चा मर गया है अगर जानवर के, तो कहते थे औरतों को भी ले लो, वो भी खा ले, वो खाने दो। अगर बकरी को ज़िबह किया और उसके पेट में बच्चा था और बच्चा भी ज़िंदा निकल आया, तो कहते थे नहीं नहीं ये सिर्फ मर्द खाएंगे। यानी बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। अल्लाह ताला ऐसी बातों को पेश करके अब आगे नबी सल्लम के ज़रिए वो बता रहे हैं कि हराम क्या है। यानी अभी तक जितनी आयतें पढ़ी हैं ना अपनी ज़ुबान में आपके, कि मुशरिकीन मक्का ने जिन चीज़ों को हराम किया हुआ था उसका तस्करा हुआ। किसी भी माशरे के नॉर्म्स, रसूमात, रिवाज, सोच, ये सारी कुछ बग़ैर दलील के अगर है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह की नज़र में। इसके बरक्स अब यहाँ एक लिस्ट है, और तीसरी दफ़ा ये मुकाम आ रहा है अभी तक के पारों में कि अल्लाह अपने नबी के ज़रिए क्या कहलाते हैं। कुल ला अजीदु फी मा उही इलैया मुहर्रमन, मैं तो उस वही में जो मेरी तरफ की गई कुछ नहीं हराम पाता। यानी जो ये पीछे लंबी लिस्टें थी, ये जानवर और इसकी और इसकी, ये तो मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरी किताब में तो कोई नहीं है। हाँ मगर क्या चार चीज़ें, इल्ला यकूना मैततन, मुर्दार। देखिए सूरत बकरा में भी ये पैगाम आया, फिर उसके बाद सूरह आल इमरान में भी देखा, मायदा में देखा, और अब यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ के भी चलेगा सूरत नाहल में, तो और भी डिटेल से आएगा। असल में कुरान ने नमाज रोज़े पर इतनी बात नहीं की, तस्करा किया, हुक्म दिया। डिटेल सारी हदीस से मिलेंगी, सुन्नत से मिलेंगी, सीरत से मिलेगी। इन चीज़ों पे कुरान क्यों बात करता है? क्योंकि ये लोगों की डे टू डे लाइफ होती है। आज भी उम्मत मुस्लिमा को नमाज का तरीका तो शायद आता ही होगा, क्योंकि हर एक ने अपने अपने मसलक और अपनी सोच के मुताबिक नमाज की किताबें बना के दे दी। हमें भी शुरू से फिक्र होता है कि बच्चा एक तो नूरानी कायदा पढ़ जाए, फिर कुरान पूरा कर ले और नमाज पढ़ने लग जाए। इस तक तो अभी तक हम इंडो पाक के मुसलमान काफ़ी केयरफुल हैं, लेकिन जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं वो कुरान से नहीं लेते, जिसमें ये एक चीज़ है। सिंपल चार चीज़ों को हराम करार दिए, बाकी सब ख़त्म है। और अक्सर लोग ना कुरान पढ़ने या कुरान को समझने से डरते हैं। मैंने बहुत सारी सिस्टर्स को देखा है, कहती नहीं कुरान पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा, अच्छा फिर ये भी हराम हो जाएगा, वो भी हराम होगा। आप यकीन कीजिए कि कुरान पढ़ने से पहले हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल थी, खुद साख्ता पाबंदियाँ, कोई नानी ने कह दी ये नहीं करना वो नहीं करना। हमारे कल्चर में अमूमन आप देखिए अजान की आवाज़ सुन के सर पे दुपट्टा लेते हैं, बाथरूम में भी जाते हैं वजू करते वक्त एक ख़ास स्टाइल से दुपट्टा लिया जाता है, और बाहर मर्दों में निकलते वक्त कोई एहतमाम नहीं है। कुरान पढ़ते वक्त एक ख़ास एंगल से पूरा लपेट के दुपट्टा लेते हैं, हालांकि अल्लाह ने ऐसे कोई हुक्म नहीं दिए। यानी कितनी चीज़ें, इवन बहुत सारे पर्सनल मैटर जो औरतों के होते हैं, आप उस पर देखिए कि कितनी पाबंदियाँ हैं कुछ लोगों पर, लेकिन कुरान सुन्नत में ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जुमला लिख लें अगर याद रह सके कि कुरान पढ़ने से ज़िंदगी आसान होती है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल है, जिसको ड्राइविंग नहीं आती उसके लिए ड्राइविंग एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जो सीख लेता है थोड़ी आसान हो जाती है, और जो गाड़ी चलाने लगता है उसके लिए बिल्कुल आसान है। खाना जिसने कभी पकाया नहीं उसके लिए हो सकता है माचिस की तीली जलाना भी बड़ा काम हो, लेकिन आप जैसी माशाल्लाह एक्सपर्ट खवातीन उनके लिए खाना बनाना मुश्किल नहीं। बिल्कुल इसी तरह आप जो काम सीख लेते हैं और जिस काम को आप करने लग जाते हैं वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। कुरान पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। 145 की रोशनी में देखते हैं कि चार चीज़ें कौन सी हराम है। एक तो है मुर्दार, खुद से मरा हुआ जानवर, फिर खून जो जिसे में एक्स्ट्रा ब्लड होता है, दमे मसफूख कहते हैं इसको, फिर खिंजीर उसका गोश्त, उसके बाल, उसकी खाल, हर चीज़। तो अगर आप उसको इस्तेमाल ना करें खाने में पीने में, तो आपको पिक की चर्बी के जो बने हुए पर्स हैं, जूते हैं, उससे भी अवॉइड करना होगा। और फिर हर वो खाना जिसको अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे नज़र किया गया हो। अल्लाह ताला हमें सारी ही हराम चीज़ों से बचा दे। आगे दोबारा बात यहूद की सरकशियों की तरफ आती है, 146 से 147, यहूद की सरकशी की सज़ा। आप देखिए कि अभी तक हम पीछे जो आयतें पढ़ चुके थे, ये मक्का वालों की बिदात थी। मक्का वाले बेचारे कौन थे? उम्मी, इल्म लिया ही नहीं, कोई नबी आया नहीं। हज़रत शुएब के बाद नबी सल्लम ही पहले नबी थे जो अरब की ज़मीन पे आए। अब यहाँ अहले किताब में यहूद, जिनका वास्ता मुसलमानों से मदीना में था, कि जो किताब वाले भी थे सब था, लेकिन उनके मजहबी रहनुमाओं ने बहुत सारी चीज़ों को खलत वलत कर दिया था। इस पे अल्लाह ताला ने सज़ा क्या दी कि उनको शरीयत मुश्किल मिली। और शरीयत के मुश्किल होने की दो वजूहात, एक तो क्या था कि अल्लाह ने तो सिंपल रखा था, लेकिन उनके मुफ्तियों ने और उनके फकीहों ने अपने फतवों की रोशनी में दीन मुश्किल कर दिया था। आज भी आप देखिए कि हमारी कौम का एक मिजाज है, जो डॉक्टर एक या दो गोली दे ना, कहते हैं क्या फ़ायदा, इतने पैसे देकर गए और गोली तो एक ही दी। और जो डॉक्टर खूब 10-12 गोलियां और पीने को और खाने को और लगाने को दे, कहते हैं कितना अच्छा डॉक्टर है। हालांकि आप अपनी अकल से पूछें तो जिसने एक गोली दी है ना, उसको कॉन्फिडेंस है कि आपको बुखार की कौन सी किस्म है, ये गोली खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वो क्यों आपको दे? और जो बहुत सारी देता है वो क्या सोच के देता होगा बेचारा, कोई तो काम करेगी ना। बस यहाँ यही समझिए, जितना ज़्यादा आपके पास इल्म आता जाता है, आप उतने कंसाइज्ड होते जाते हैं, टू दी पॉइंट, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है। तो दोबारा फिर इस पे यही बात है कि उनके मुफ्तियों ने फतवों की बुनियाद पे और लोगों को मुतमईन करने के लिए तौरात की बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हराम नहीं की थी उन्होंने कर दी। चलो एहतियात का तकाजा ये है, एहतियातन ये कीजिए, वो कीजिए। आज हमारे यहाँ एक ऐसा मजहबी तबका है, सब ऐसे नहीं है ऑफकोर्स, मैं खुद बात करते हुए अपना ही जायजा क्यों ना लूँ, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। और वो क्या हैं कि जो लोगों को दीन का बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन देते हैं। जैसे कहीं भी कोई तबलीग के तौर पे किसी ने किस्सा किसी को सुनाया कि एक बादशाह था और उसके पास तख्त और सब कुछ थे, और एक लौंडी उसको पंखा चला करती थी। गर्मी की दोपहर थी, इतने में क्या हुआ कि वो बादशाह के उस कमरे में सफाई के लिए गई, उसका बेड देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी देर मैं भी इस पे बैठ के देखूं। जब बैठी वो नरम नरम बिस्तर तक सो गई, और जब वो सोई तो उसकी आंख किससे खुली? बादशाह उसको कोड़े मार रहा था कि तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बिस्तर पे लेटी है। अब ये वाक्या सुनाकर उन मुबल्लिग ने लोगों को मैसेज क्या दिया कि बादशाह ने उसको कोड़े मारे कि वो लौंडी जो चंद घंटे एक नरम गरम बिस्तर पे सोई है उसको कोड़े पड़े हैं, तो सोचे कयामत के दिन उस बादशाह को कितने कोड़े पड़ेंगे। मतलब यह है कि बेडों पे सोने वाले और जिनको अल्लाह ने दुनिया के साशे दिए हैं वो सब कोड़े ही खाएंगे। क्या ये रियलिटी है? रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना तो मफिल आखिरत ही हसना, यानी ये गिल्ट दिया गया आज। यानी मैं इस बात से अगर आपको कंसाइज कराऊँ ना, तो आज हमारे यहाँ ये गिल्ट है कि अमीर लोगों ने तो जाना ही आग में, ये तो बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, ये आग में जाएंगे, देखे घर इनके कितने बड़े हैं। और वो बेचारे गरीब गुरबा, और पता नहीं वो गरीब गुरबा तहारत भी ठीक करते हैं कि नहीं, पाकी ना पाकी छोड़िए उनके अंदर झूठ साच, उनमें नमाज है भी कि नहीं। तो हालांकि ना अपनी जगह अमीर होना कोई बहुत अच्छा है, ना अपनी जगह गरीब होना बुरा है। तो ये चीज़ें कब होती हैं? जब लोग अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐड ऑन करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आयत 148 से 150 में मुशरिकीन की ये खुशनुमा दलील है जो लोग अक्सर दिया करते हैं अपनी किसी भी गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए। और वो क्या थी? सयकूलुल्लज़ीन अशरकू लौ शाअ अल्लाहुमा अशरकना। देखिए, अपने शिर्क का सारा इल्ज़ाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह पे डाल रहे हैं, अगर अल्लाह चाहता तो मैं रोक लेता। अच्छा, अगर हम ये गलत काम कर रहे थे तो अल्लाह फिर हमें रोकता क्यों नहीं था? हालांकि अल्लाह ने आपको मुझे दुनिया में इख्तियार की आज़ादी दी है, जो भी करेंगे जिस तरह भी करेंगे अब कीजिए। अल्लाह ताला बीच में इंटरप्ट नहीं करता, हाँ एंड पे पूछेगा तुमने क्या किया। और आप इसको एक इम्तिहान के कमरे से समझिए कि कमरा इम्तिहान में बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, बीच में एग्जामिनर भी फिर रहा, वो आते जाते में देख रहा है कि ये स्टूडेंट गलत सवाल हल कर रहा है या इसका जवाब ठीक नहीं लिख रहा, तो क्या वो वहाँ रोक के उसकी मदद कर सकता है? ख्यानत होगी ना। बस इस मिसाल से समझिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबको इख्तियार दिया, अक़ल भी दी, समझ भी दी, उसको फितरत भी दी, उसको वही भी दी, कायनात भी है, सब कुछ है। अब अगर आप गलत करते हो तो अल्लाह बीच में नहीं रोकता, लेकिन एंड रिजल्ट्स फिर आपकी मर्ज़ी के नहीं होंगे। तो ऐसी ही कुछ बातों का इधर तज़किरा। इसके बाद बहुत ही अहम रुकू है, हिस्सा है बल्कि 151 से 153। आप इसका एक नाम रख सकते हैं, तौरात के अहकाम अशरा की कुरानी ताबीर। हमने 10 कमेंडमेंट्स का नाम पढ़ा हुआ है, पीछे भी सूरह बकरा पे भी आपको बताया था कि यहूद को जो 10 हुक्म दिए गए थे, जो हर दौर में ही मुसलमानों के साथ थे, कुरान में भी वही है। यानी दिस इज़ कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमेंडमेंट्स। क्या क्या है ज़रा गिन लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हर शरीयत में रही, और आप इसको ये भी कह सकते हैं उम्महाते शरिया, उम्महात उम से, यानी वो अहकामात जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लम तक हर नबी की शरीयत में कॉमन रहे। तो उसमें अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, फिर इसके बाद औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करना, जाहिर या पोशीदा बेहयाई के करीब मत जाना। ये कॉमन्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, यानी ये किसी दौर में ये चीज़ें जायज़ नहीं हुई। फिर इसी तरह किसी जान को नाखत कत्ल करना, यतीम का माल ना खाओ और उम्दा तरीके से उसके माल की हिफाजत करो, ये 6 हो गई। फिर आगे 7th पॉइंट क्या है, नाप तोल को अदल के साथ पूरा करो, हमेशा अदल की बात करो और जानिबदारी ना करो, और अल्लाह के साथ किए गए अहद को पूरा करो और हमेशा अदल की बात करो, यानी किसी का हक ना मारो। अब आप देखिए कि ये कितने खूबसूरत अहकामात हैं, किसी भी सोसाइटी के फ्लरिश करने, ग्रो करने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो हम इन 10 चीज़ों को अगर कुरान की रोशनी में देखें, और आपको ये सब देखिए कि इन आयात में मिल रहे हैं, जिसमें 151 से 153 में अल्लाह ने एक एक चीज़ खोल के रख दी, तो क्या पता चला कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ। अगर आप कुरान पाक को बग़ैर किसी तासुब के पढ़ें तो आप कहेंगे कि इससे खूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी कोई किसी को दे नहीं सकता। फिर आयत 154 में तौरात की कुछ खूबियों का तज़किरा है, तौरात के महासिन है, सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सील लिकुल्ली शैइन व खुदा वहुदाऊँ व रहमतल्लाहुम बिलिक़ाई रब्बिहिम युमिनून। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को एक किताब दी, क्या पता चला कि तौरात जब नाजिल हुई थी तो वो इसी तरह मोतबर थी जैसे आज कुरान है, वो इसी तरह खूबियों से भरी हुई थी, उसमें हिदायत भी थी, रहमत भी थी, तफसीलात भी थी जैसे कुरान में। फ़र्क क्या है, आज अमेंडमेंट्स हो गई, चेंजेस हो गई। आप अपने घर में एक नया सोफ़ा लाते हैं, वो चमक रहा है, साफ़ सुथरा, एक साल में बच्चों ने उस पर लाइनें डाल दी, वो ख़राब हो गया, तो वो अब उस तरह का तो नहीं रहा। बस पहली किताबों में और कुरान में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हर किताब जब नाजिल हुई थी बिल्कुल अच्छी थी जैसे कुरान बेहतरीन है। फ़र्क क्या है फिर तौरात और कुरान पाक में, ये जुमला फ़ायदा देगा आपको। तौरात भी अल्लाह की तरफ से थी, इंजील भी अल्लाह की तरफ से थी, बेहतरीन थी, अपने दौर के तकाज़ों को पूरा करती थी, तफसील लल्ली कुल्ली शैयन उस दौर की हर ज़रूरत को पूरा करती थी और कंप्लीट थी। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं पिछली किताबें अधूरी थी फिर कुरान आया तो पूरा हुआ पैगाम। नहीं, क्या मतलब, अल्लाह अधूरी शरीयत दे के पूरी इताअत मांगेगा? एक कॉमन फ़र्क है, सूरह हिजर में आए कि आगे आते तो आपको वहाँ भी मेंशन करूँगी, किताबें सारी अल्लाह की तरफ से बेहतरीन हालत में उतरी थी। फ़र्क ये था कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। पिछली किताबों के बारे में ये वादा नहीं था अल्लाह का, तो उन्होंने बुक्स को एक्सरसाइज बुक बना दिया। देखिए, बच्चा कापी पे लिखने की बजाय किताब पे ही लिखना शुरू कर दे तो कुछ दिन बाद उस किताब का क्या हाल होगा? पिछली कौमों ने, यानी आज की बाइबल क्यों रिलायबल नहीं रही, उसमें अमेंडमेंट्स हो गई। आज भी आप कोई रेफरेंस देते हैं ना तो आपको बताना पड़ता है कि ये किस साल की बाइबल है। और जो पॉइंट मैंने खुद भी अमली तौर पे देखा है कि नॉन मुस्लिम मुल्कों को कुरान की तरफ माइल करने में बहुत फ़ायदा मंद होता है, वो क्या कि 1400 साल प्लस हो गए लेकिन कुरान की ज़बर ज़ेर नहीं बदली। इवन पुरानी इंग्लिश और नई इंग्लिश का फ़र्क देख ले। उर्दू हम में से बहुत सारों को पिछली समझ ही नहीं आएगी जो आज से कुछ 500 साल पहले थी। लेकिन कुरान पढ़ते वक्त कभी आपको आज तक फील हुआ? एवर न्यू, जैसे आसमान नया है, जैसे ज़मीन नई है, इसी तरह से कुरान हमेशा के लिए नया है। तो फिर क्या पता चला कि पिछली किताबों में तब्दीलियां हुई जो कि कुरान में क़यामत तक नहीं होंगी इंशाल्लाह।